ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। मधुवन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि, जितना वर्णन कर सकते हैं उतना हम करते हैं। ऐसी भूमि पर आप सभी पधारे हैं भट्ठी करने लिए। तो प्यारे बाप दादा, सर्व दादियाँ, सर्व वरिष्ठ भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर मौका आप सबको मिला है पांडव भवन में तपस्या करने का। दुनिया की निगाहों से हम दूर है, यहाँ शहरों के कोलाहल से भी हम यहाँ दूर है। दुख शांति के वातावरण से भी हम यहाँ दूर हैं। अगर कहें मधुबन स्वर्ग भूमि है तो ये गलत नहीं होगा। और ऐसे स्थान पर आप सभी भट्ठी करने आए हैं तो आप सबके सौभाग्य का किन शब्दों में वर्णन करें, तो आप अपने लिए ही ताली बजाएं। आप जैसे ही यहाँ पहुँचे आपको अकोमोडेशन मिला, आपको ये बैज, हम इसको कहते हैं विजय माला, ये विजय माला आपको मिली और इस बैज पर जैसे ठप्पा लगा हुआ है, पढ़ा आपने इस भट्ठी का नाम क्या है, बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या भट्ठी। क्योंकि आगे क्या होना है कुछ पता नहीं, लेकिन अभी ये सुंदर मौका मिला है मधुबन में भट्ठी करने का। बहुत समय से आपने रिक्वेस्ट की होगी, आखिर वो दिन आया आज, यही कहेंगे, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। तो बाबा ने यह बहुत सुंदर मौका दिया है और मुझे विश्वास है कि आप इसका पूरा पूरा लाभ लेंगे। आपको इंस्ट्रक्शंस तो दी गई कैसे अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सब कुछ सफल करना है। तो कैसे सफल करेंगे? सफल करेंगे अपनी बुद्धि में लक्ष्य और उद्देश्य रख करके। तो अभी का जो विषय है वो है इस तपस्या का लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है, क्यों आप सभी यहाँ आए हो। माताएं है ना, इस दरवाजे से नहीं आना, इस दरवाजे से आना, ठीक है ना। ये बहनों का तरफ है, इस दरवाजे से आना। कोई भी जब कार्य किया जाता है तो पहले उसका उद्देश्य होता है, ये कार्य का हम क्या रिजल्ट चाहते हैं, और फिर उसको संपन्न करने के लिए कई लक्ष्य रखते हैं। एक मकान बनाते हैं तो उसमें भी कई फेजेस आती है, रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं आप लोग, तो उसमें भी कई फेजेस होगी। पहले फेज में ये बिल्डिंग बनाएंगे, सेकंड फेज में ये बगीचा बनाएंगे, थर्ड फेज में ऑडिटोरियम बनाएंगे, जो भी। तो उसको कहेंगे पहला एक जो लक्ष्य होता है उसको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो जब ब्रह्मा कुमारियों से मिलते हैं कोई भी बाहर के लोग, तो पहला यही प्रश्न पूछते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? पूछते हैं ना, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? तो क्या जवाब देते हैं हम, हमारी संस्था का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? हाँ, मनुष्य से देवता बनना, ये हमारा उद्देश्य है। जैसे वहां भी कहेंगे भाई मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या उद्देश्य है? डॉक्टर बनना। पहला तो मेन उद्देश्य वही है, फिर उसमें कई डॉक्टर में भी कई बातें हैं। तो फिर वो पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य, तीसरा लक्ष्य, चौथा लक्ष्य, MBBS करके फिर MD करना, फिर MPhil करना, न जाने क्या क्या पढ़ते ही रहते हैं। तो उसमें कई लक्ष्य होते हैं, पर मेन उद्देश्य होता है हमको डॉक्टर बनना है। तो यहाँ हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमको मनुष्य से देवता बनना है। लेकिन मनुष्य से देवता बनने तक कितनी फेजेस है, कितने उसमें कदम है, कितने उसमें पड़ाव है। सबसे पहले तो हम क्या थे? बाबा का बनने से पहले तो हम शूद्र ही थे, यही कहेंगे ना। शूद्र से फिर ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। लेकिन शूद्र थे तो हमारा खान पान कैसा था, व्यवहार कैसा था, रहन सहन कैसा था, हाँ ये सब तमोगुण से ही संबंध रखता था। लेकिन जैसे हमें बाबा का परिचय मिला, हमने स्वयं को पहचाना, बाबा को पहचाना, और हमें ये महसूस हुआ कि अरे हम तो इतने ऊंचे देवता थे और हमें फिर से बनना है, तो हमारा पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली बन जाते हैं, कोर्स करते हैं, मुरली सुनते हैं और ब्रह्मा बाबा को अपना अलौकिक पिता मानने लगते हैं, फिर मर्यादाओं पर चलते हैं, अन्न की शुद्धि, संघ की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, ये सब जो बाबा नियम मर्यादाएं बताते हैं उन पर हम चलना शुरू करते हैं। अब ये पहला फेज कहेंगे, यही कहेंगे ना। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमारे चाल चलन में अंतर पड़ जाता है, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब में परिवर्तन आता जाता है। अमृत वेला उठते हैं, बाबा की मुरली रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्लास में जाते हैं, शुद्ध शाकाहारी बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन स्वीकार करते हैं, ऐसे धीरे धीरे ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा हमको क्या लक्ष्य मिलता है कि हमको कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनना है, कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्म को नहीं छोड़ना है, जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ना है, सब कुछ करते हुए भी न्यारा रहना है। कर्मातीत माना कर्म के बंधन से अतीत, कर्म से न्यारे नहीं। कर्म तो करेंगे, ब्रह्मा बाबा ने भी अंत तक कर्म तो किया ना, मुरली भी सुनाई, सब कुछ किया, सब कुछ माना सब कुछ। और बस जब विश्राम का समय था और कैसे आत्मा पंछी उड़ गया। तो कर्म योगी तो बनते हैं, लेकिन साथ साथ बाबा कहते हैं तुम्हें कर्मातीत भी बनना है, कर्म के बंधन से अतीत, न्यारा। अर्थात कर्म का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। जब प्रभाव पड़ता है तब क्या करते हैं, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो ये मैं मेरा आ जाता है। मैं मेरा जैसे ही आया तो कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, इसीलिए मैं मेरा आया। तो बाबा कहते हैं उस दिन की भी मुरली थी, ये तीन मैं खत्म करो, तीन मैं बाबा ने बताए। तो दो मैं तो बिल्कुल ही खत्म करना है, एक मैं कौन सा है, अभिमान का मैं, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं वकील, मैं ये, आजकल तो ये भी है, मैं तीन बेटों का बाप हूँ, ये भी अभिमान, तीन बेटों का बाप हूँ। और वो बेटे क्या करते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते, पर नशा तो होता है ना, मेरे तीन बेटे हैं, मेरे चार बेटे हैं। तो इसीलिए ये सब उल्टे नशे, क्योंकि ये तो सब कर्मों का हिसाब किताब है, और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है तो कोई किसी का नहीं। इसीलिए वो जो अभिमान आता है, प्राप्तियों का अभिमान, वो बाबा कहते हैं ये अज्ञान है। फिर उसका ऑपोजिट वो भी मैं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ, मैं तो होशियार नहीं हूँ, आदि आदि अपनी हीनता की भावना। एक होता है अभिमान और दूसरा होता है हीनता, अपने प्रति हीन सोचना। हम बताते हैं ना कि चार प्रकार की वृत्तियाँ होती है। एक वृत्ति होती है मैं भी बुरा, ये भी बुरा, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ लेकिन वो भी मेरे से ज़्यादा बुरा है, हाँ मैं भी बुरा हूँ पर वो मेरे से ज़्यादा बुरा है, तो मैं भी बुरा वो भी बुरा, जिसका भी नाम कहेंगे अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, सब बुरे ही बुरे हैं दुनिया में, कोई भी अच्छा नहीं है। तो नज़र ही ऐसी हो जाती है कि सब बुरे हैं। पर दूसरे होते हैं वो दूसरों के प्रति तो अच्छा सोचते हैं लेकिन खुद के प्रति अच्छा नहीं सोचते, वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा है पर मैं इतना नहीं, मैं इतना नहीं। तो अपने प्रति हीनता की भावना और पर दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। फिर तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो खुद को तो बहुत बड़ा समझते हैं पर हर एक के लिए नफरत, हर एक की नेगेटिव बातें सुनाएंगे, तो दूसरे सब बुरे हैं, मैं ही केवल अच्छा हूँ, बस मैं, दूसरे सब बुरे। और चौथे कौन से प्रकार के लोग हैं जो कहेंगे मैं भी अच्छा हूँ तो दूसरे भी सब अच्छे हैं, क्योंकि हर एक में विशेषता है। बाबा यहाँ तक कहते हैं कि हमारी ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, अनपढ़ माताएं, कभी अक्षर ज्ञान नहीं लिया, स्कूल कभी नहीं गए, ख ग ग लिखना भी नहीं आता है, परंतु खाना पकाने में इतनी होशियार, और भगवान को पहचान लिया। बड़े बड़े विद्वान पंडित नहीं पहचान पाए और इन अनपढ़ माताओं ने पहचान लिया, तो कौन महान हुए, कौन विशेष हुए, वो महान वो हुए या ये बड़े विद्वान या जो अनपढ़ माताएं लेकिन भगवान को पहचान लिया, तो वो महान हो गई ना। तो इसीलिए सब महान हैं, सब ऊंचे हैं, सब आत्माएं हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो हद की भावना ही खत्म हो जाती है और हर एक के प्रति रिस्पेक्ट, सम्मान। और ये कर्म फिलॉसॉफी, आप दूसरों को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, आप दूसरे की ग्लानी करेंगे तो वो कोई कम है क्या आपकी ग्लानी करने के लिए। इसीलिए हम अगर ग्लानी अपने लिए नहीं सुनना चाहते तो हम भी दूसरों की ना करें, समझ की बात तो यही है ना। तो इसीलिए तो जब मैं को बाबा कहते समझो, और फिर उसके बाद बाबा कहते हैं तीसरा मैं हूँ आध्यात्मिक रूप से, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, इस रूप से मैं को पहचानना। और उसमें भी बाबा कहते हैं कि मैं किसकी संतान, वो नशा चढ़ाना, इसलिए दादी जानकी क्या करते थे, तीन बार ओम शांति कहकर क्या कहते थे, हाँ मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो ये नशे के बोल बोलते थे दादी। तो मैं कौन, वो आत्मा की ऐसी स्मृति आ जाती है, सब स्वमान हमारी बुद्धि में आ जाते हैं, जो उसका इतना आनंदमय नशा चढ़ जाता है। तो हम कहेंगे वो मैं, तो एक है स्वमान और दूसरा है अभिमान। कई स्वमान को अभिमान को मिला करके क्या कहते हैं, स्वाभिमान। वास्तव में दो अलग शब्द है, स्वाभिमान भी अभिमान की लिस्ट में आता है। हाँ मैं कोई बुद्धू थोड़ी हूँ, ये क्या समझा इसने, तो मेरा भी तो कुछ स्वाभिमान है। लेकिन दूसरा होता है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये मेरा स्वमान है। कोई भी व्यक्ति मुझे अशांत नहीं कर सकता है, क्योंकि यही मेरा स्वभाव है, शांत रहना, शांति में रहना। तो ये मेरा स्वभाव है। हर चीज़ का अपना अपना स्वभाव होता है। पहले थोड़ी हलचल होगी तो स्वभाव थोड़ा बदल गया, लेकिन उसको छोड़ दो तो वापस अपने स्वभाव में आएगा। तो हर आत्मा का भी अपना स्वभाव है। क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, कितना घंटा क्रोध कर सकते हैं? एक ही समय पर किसी को कहो कि आप 4 घंटा गुस्सा करो, कर सकेंगे? नसें फट जाएगी दिमाग की या हार्ट का, सब दिवाला निकल जाएगा, शरीर पर ही कितना बुरा असर पड़ेगा। 5 मिनट भी गुस्सा करते हैं तो भी खून तपता है जैसे, और उसका भी बुरा असर हो सकता है। तो शरीर भी नहीं झेल सकता तो आत्मा तो झेल ही नहीं सकती, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते अपने स्वमान में रहो, क्योंकि आत्मा को हमने पहचान लिया। तो जैसे इस मैं को हम समझते हैं, जिसके आधार से हम उस नशे में रहते हैं, तो फिर बाकी सब नशे नुकसानकारक है ना, सब नशे नुकसानकारक है। सिर्फ एक जिसको नारायणी नशा कहते हैं, मैं क्या बनने वाला हूँ, देवता बनने वाला हूँ, श्री नारायण बनने वाला हूँ, बाबा इसलिए हाथ उठवाते हैं। भले अभी तक वो लायक तो नहीं है, लेकिन हाथ तो उठा देते हैं ना। तो बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, हाथ तो उठा दिया, कह तो दिया कि हाँ हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब जब इस स्वमान से आगे आए, और फिर हमें क्या लक्ष्य मिलता है, कर्मातीत बनने का, कर्म के बंधन से अतीत। फिर और आगे जाओ तो बाबा कहते हैं संपन्न बनना है, संपूर्ण ब्रह्म बनना है, ब्रह्मा बाप समान। तो ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण, ये हमारा आगे का लक्ष्य हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी यही बुद्धि में था, मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। गुलजार दादी ने वतन में बाबा का अनुभव किया कि कैसे अभी जो वर्तमान ब्रह्मा बाबा है और जो संपूर्ण ब्रह्मा है उसमें कितना अंतर है। तो बाबा दादी को हमेशा कहते थे, जाओ बच्ची वतन में जाके देख के आओ मैं कितना नज़दीक आया हूँ संपन्नता के। संपन्न भी और संपूर्ण भी, ये दो अलग शब्द हैं, इनका भी अर्थ है ना। संपन्न किसको कहेंगे और संपूर्ण किसको कहेंगे? जैसे पूर्णमासी की रात पर चंद्रमा संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। संपन्न माना प्रकाश में संपन्न, बाकी दिनों में इतना प्रकाश नहीं होता जितना पूर्णमासी की रात होता है। तो प्रकाश में संपन्न, और फिर आकार में संपूर्ण, गोलाकार एग्जैक्ट है, 14 भी होगा तो भी थोड़ा फर्क होगा, और जब तक पूर्णमासी न हो। तो इसीलिए पूरा गोलाकार बन जाता है। तो पूरा गोलाकार माना संपूर्ण और फुल लाइट सहित, तो वो है संपन्न। और देवताओं की महिमा में भी हम यही कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। तो सर्व गुणों में संपन्न, 16 कलाओं में संपूर्ण। 16 कला माना संपूर्ण, 16 आना सच जिसको कहते हैं, क्योंकि 16 दिन लगते हैं अमावस्या से लेकर पूनम तक, 16 दिन लगते हैं। एकदम अज्ञान अंधेरी रात और एक 16वें दिन पूरा चंद्रमा, और वो हो जाता है कम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो किस में संपूर्ण? कलाओं में संपूर्ण, जिसको कहेंगे पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण, और सर्व गुणों में संपन्न। तो बाबा ने दो प्रकार के गुण बताए, एक है आत्मा के अनादि गुण और दूसरे हैं आत्मा के आदि गुण। अनादि गुण कौन से हैं? अनादि गुण कौन से हैं आत्मा के? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 गुण मूल गुण बताते हैं आत्मा के। तो ये 7 ही मूल गुण में सर्व गुणों में ये अनादि गुणों में संपन्न बनना है, एक गुण की भी कमी न हो। पवित्रता तो कंप्लीट पवित्रता, प्रेम तो कंप्लीट प्रेम, ये नहीं कभी कभी प्रेम कभी कभी नफरत, सुख तो संपूर्ण सुख, है ना। तो इसीलिए ये 7 जो गुण है अनादि गुण, इन गुणों में पहले संपन्न बनना है। तभी बाबा कहते चार्ट रखो, चार्ट रखो कि कितना बने, 50%, 60%, 70%, कितना परसेंट बने। फिर आदि गुण जो देवताओं के गुण हैं, अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, निर्भयता, क्योंकि वास्तव में जो मूल होता है वो तो 7 ही होता है। 7 दिन, 8वां दिन आता नहीं है ना, 7 दिन की जिंदगानी है। तो इसीलिए 7 दिन कहते हैं, 7 सुर कहते हैं, 7 रंग कहते हैं, फिर बाकी रंग जो है वो 2-3 को कंबाइन करके रंग रंग बनाते हैं। तो इन 7 ही अनादि गुणों से ही देवताओं के गुण बनते हैं। अंतर्मुखता का जो गुण है वो किस आधार पर, कौन से अनादि गुण से अंतर्मुखता आती है, गंभीरता कौन से गुण से आती है, सरलता कौन से गुण से आती है, ये भी एक होमवर्क है। 7 मूल गुणों के आधार से हमारे दैवी गुण कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, तो वह सहज हो जाता है। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि मैं आत्मा इन्हीं गुणों को अनुभव करके सर्व गुणों में संपन्न बन लूंगी, उसके लिए चार्ट रखो कितना बाकी कमी है, कितना परसेंटेज और भरना है। तो ब्रह्मा बाबा ने यही प्रसाद किया, और देखो कैसे सर्व सब गुणों में संपन्न बन गए, संपूर्ण बन गए, और आत्मा उड़ गई। सब जो भी इस दुनिया के शरीर के जो भी बंधन थे, सबसे आत्मा मुक्त हो गई। तो जब मुक्त हो गई तो इस पुराने शरीर में तो रह नहीं सकती आत्मा। तो इसीलिए बाबा ने यही कहा, ब्रह्मा बाप समान। तो उसके लिए क्या करो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो। कैसे रखेंगे कदम पर कदम? कोई भी कर्म करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, तो उस समय क्या सोचो आप, क्या अंदर में मन में लाओ, ये ब्रह्मा बाबा का कदम है। हो सकता है अगर ब्रह्मा बाबा इस समय यहाँ होते तो ब्रह्मा बाबा ऐसे करते, अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ होते इस समय तो ब्रह्मा बाबा ऐसे बोलते, अगर ब्रह्मा बाबा नहीं बोलते तो मुझे भी नहीं बोलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है ना। कई बार होता है ना, कई कहते हैं बस एक टिप मुझे क्या करना है, एक टिप बस, क्योंकि एक मिनट का ही टाइम है। तो उनको यही कहते हैं, बस एक बात सदा याद रखो, न किसी को दुख दो न किसी से दुख लो, बस। और सचमुच इतना खुश हो जाते हैं, बस एक टिप मिला, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, इनसे तो आगे क्या मिल सकता है। न दुख दो न दुख लो, तो बाबा कहते सुख दो सुख लो, ये बाद में समझेंगे, पहले क्या समझेंगे, न दुख दो न दुख लो। तो न दुख दो इसका मतलब सुख दो, न दुख लो माना इसका मतलब सुख लो। पर सीधा कहेंगे सुख दो सुख लो तो कई प्रश्न उठेंगे, सबको कैसे सुख दे सकते हैं, फिर लोगों की डिमांड इतनी है, सबकी डिमांड कैसे पूरी करेंगे, पता नहीं क्या क्या प्रश्न करते हैं। हाँ एक बार ऐसे था, क्योंकि बाबा तो यही कहते हैं ना, चलो दुख नहीं दिया पर सुख कितना दिया। तो जब हम अगर ये कहते हैं सुख दो सुख लो तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कैसे सुख दें सबको, और सबको कितना भी दो कोई तो संतुष्ट होंगे ही नहीं, तो कितना सुख दें। वो कहेगा ये चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, तो हम कितना सुख दे समझते, वस्तुओं से ही सुख मिलता है ना, मनुष्य तो ऐसे ही समझते हैं। तो इसीलिए सीधा पहले सुख दो नहीं, पहले क्या बोलो, न दुख दो न दुख लो। जब ये बात कहते हैं ना, बिल्कुल उनके अंदर में घर कर जाती है। बस ये आपने पते की बात कही, मैं अभी किसी को दुख नहीं दूंगी, क्योंकि दुख कैसे देते हैं, दुख कैसे देते हैं, शब्दों से। अब कोई मांग रहा है कोई चीज, अगर हमारे पास वो चीज नहीं है, मान लो मैं नहीं दे सकती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने दुख दिया, लेकिन चलो नहीं दे सकती हूँ तो हम प्यार से भी तो कह सकती हूँ ना कि भाई देखो मेरे पास तो ये है नहीं, आप और कुछ मांगो और कुछ दो, आपका ऊपर ये हम नहीं दे सकते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि अगर वो मांगे और गया, तुम तो सदा मांगते रहते हो, तुमको तो अकल ही नहीं है, तुमको तो ये नहीं है, तुमको वो नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। अब उसको सुख तो क्या दिया, हाँ दुख ही दुख दिया। और हम समझते हैं कि हम तो किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन हमारे बोल में कितना दुख है। जैसे कि वो कांटे चुभते हैं, तीर लगाया, जैसे तीर ऐसे उसको घायल कर दिया, दिल को तोड़ दिया। तो इसीलिए ऐसे शब्द भी मुख से नहीं होने, कर्म तो होने ही नहीं है, कर्म तो होने ही नहीं है, परंतु वचन भी ऐसे नहीं होने चाहिए। तो अगर कुछ बात भी है नहीं कर सकते हैं तो प्यार से भी कह सकते हैं, हाँ मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए बेटा अभी नहीं। परंतु बच्चे को इतना डांटेंगे गुस्सा करेंगे मारेंगे तो वो तो रोएगा, प्यार से भी कह सकते, हर चीज प्यार से कह सकते हैं, हर चीज। कई कहते हैं ना सच सच कड़वा कड़वा होता है, हम कहते हैं सच भी कड़वा होता है मान लो, परंतु कड़वी दवा में मिठास तो डाल के खा सकते हैं ना, वो कड़वाहट लगेगी नहीं, कि कड़वाहट कड़वाहट ही लेनी है क्या, उसमें मीठा भी तो डाल सकते हैं ना। तो इसीलिए हमारे बोल कैसे हो, अगर बुद्धि में कि मुझे दुख नहीं देना है तो हम ऐसे शब्द न बोले जिससे वो तीर की तरह उसको चुभे, वो प्यार से भी कह सकते और प्यार से फिर भी जल्दी मानेगा। हम मारते रहेंगे उनको डांटते रहेंगे गुस्सा करते रहेंगे तो और ही डीठ बन जाते, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही डीठ बन जाएंगे, फिर तो बात ही नहीं करेंगे, फिर माँ तरसेगी बच्चा बात क्यों नहीं कर रहा है। बच्चे तो इनोसेंट होते हैं। तो इसीलिए प्यार भी बना रहे, लेकिन बाबा कहते हैं ना सांप भी मरे परंतु लाठी भी न टूटे, उसकी बात भी उसको हम समझाएं पर इतना प्यार से तो वो मान जाए। तो क्योंकि माँ बाप जैसे करेंगे बच्चे वैसे ही फॉलो करेंगे। तो इसीलिए तो ये जब हम अपने जीवन में लाते हैं, ब्रह्मा बाप समान हमें बनना है, ये बुद्धि में आता है, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया फिर वो बुद्धि में आता है, पहले क्या नहीं किया, क्या किया बुद्धि में आता है। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले एक सेकंड में उनको वैराग आ गया, इतना वैराग गया, एक सेकंड में वैराग आ गया। कैसे वैराग आ गया, पहले उनको प्राप्ति का अनुभव हुआ। वास्तव में वैराग भी ऐसे नहीं आता है, छोड़ना इतना सहज नहीं है, पाना पाएंगे तो अपने आप छूटेगा। जैसे किसी बच्चे के पास कोई चीज है अच्छी नहीं है, एक ब्लेड है या चाकू है या कुछ भी है, तो उसको लग सकता है, तो बच्चे को माँ कहेगी बेटा ये लाओ लगेगा तुमको, देते हो कि नहीं, नहीं तो मारूंगी। कहेगा नहीं देता हूँ, ढीठ बच जाएगा। लेकिन समझदार माँ क्या करेगी, ऐसे नहीं प्यार से कहेगी बेटा ये दो, लेकिन क्या कहेंगी, पहले कहेंगी बेटा ये जो है ना, ये जो आपने हाथ में लिया ना, ये छीछी है। बाबा भी क्या कहते हैं, कलयुग की दुनिया क्या है, छीछी है, छीछी गंदा है, छीछी छीछी है, पर देखो ये चीज बहुत अच्छी है, हाँ तुम ये लो और ये छोड़ दो, हाँ ये लो। तो बच्चा देखेगा कौन सी चीज मुझे ज्यादा प्रिय है, ये छीछी है और ये अच्छी चीज है, तो वो छीछी चीज छोड़ करके वो अच्छी चीज लेगा, क्योंकि समझदार तो होगा ना। तो इसीलिए बाबा ने सबसे पहले क्या किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कैसे वैराग्य दिलाया, सबसे पहले बाबा को विष्णु का साक्षात्कार कराया और विष्णु ने उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो मेरे जैसे हो। अब ब्रह्मा बाबा ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं इन जैसा हूं, क्योंकि वो तो विष्णु की पूजा करते थे बाबा, इसलिए तो गुरु से जाके पूछा मैं इन जैसा कैसे हूं, मैं तो इनका दास हूं सेवक हूं। परंतु नशा तो चढ़ गया कि अहम चतुर्भुज तत्त्वम तो मेरे जैसे हो, तो बस मैं ये बनने वाला हूं। तो इस कलयुगी दुनिया से वैराग आ गया। फिर दूसरा जो साक्षात्कार जिससे वैराग्य आया वो था कलयुगी दुनिया का महाविनाश। बाबा ने वो महाविनाश देखा, कैसे तीन रूपों से विनाश हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ माना सब कुछ एकदम खाक बन गया सब कुछ, और बाबा देखता ही रह गया। तो बाबा को तो इतना वैराग आ गया, और भी वैराग आ गया, बाबा ने कहा ये सब नाश होने वाला है और मैं क्या ये धंधा कर रहा हूँ, ये सब धन माल मिल्कियत ये सब क्या करूँगा मैं, ये सब खत्म होने वाला है। तो बस इतना वैराग आ गया और वैराग आ करके सोचा कि बस अभी मैं अपना बिजनेस वाइंड अप कर दूँ, क्योंकि साक्षात्कार हुआ, पहले प्राप्ति का साक्षात्कार हुआ तो नशा चढ़ गया मैं ये बनने वाला हूं। फिर इतना वैराग आ गया जो कुछ भी पसंद नहीं आया इस संसार का, हीरे मोती बाबा को सब पत्थर दिखाई देने लगे, लेकिन अंदर में इतना वैराग्य था जो तुरंत बिजनेस को वाइंड अप किया। और इसलिए वैराग जब था तो फिर जब वापस हैदराबाद गया तो उस बाबा ने शिव बाबा ने उनको कहा कि अब ये सारी तुम्हारी चल अचल प्रॉपर्टी बहनों माताओं के नाम पर करो। अब कोई सोचो जिसने सारा जीवन इतना धन कमाया हो और उसको अचानक कहा जाए कि ये सब अभी बेटे के नाम पर कर दो, आजकल तो वो डरते ना, पता नहीं बेटा मेरा बुढ़ापे में मुझे मदद करेगा नहीं करेगा, मकान जमीन जायदाद सब बच्चे के नाम पर अगर कर दिया, थोड़ा जोश में आगे बेटे को देना है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए और बुढ़ापे में उसके पास कुछ भी ना हो बेटा ही धोखा दे दे, इसीलिए नहीं, थोड़ी पूंजी तो अपने पास रखनी है, मकान अपने पास रखनी है, बेटा तो कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा सब कुछ माना सब कुछ, चल अचल प्रॉपर्टी जितनी भी संपत्ति थी सब बहनों के नाम पर विल कर दो, और ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा, कुछ नहीं सोचा मेरे परिवार का क्या होगा, ये भी नहीं सोचा। लेकिन बाबा अभी नहीं कहेंगे ऐसे ना, क्योंकि समय बदल गया, वो तो ब्रह्मा बाबा का बीज पढ़ना था और उस एक बीज जो ब्रह्मा बाबा का पढ़ा उसी के आधार से तो आज हम देख रहे हैं इतना वट वृक्ष इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सारे संसार में 140 देशों में फैल चुका है। तो आधार क्या था ब्रह्मा बाबा का, वो बेहद का वैराग्य। परंतु वो वैराग्य भी कैसे आया, जब उसको पहले प्राप्ति का अनुभव हुआ, इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी, और फिर उनको बाबा ने सतयुग का साक्षात्कार कराया, बच्चे ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने उनको दी, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, बहुत बड़ा काम दिया भगवान ने। तो जब ऐसी ऐसा साक्षात्कार कराया सतयुग का, तो बाबा के मन में आया मैं कैसे बनाऊंगा ऐसी दुनिया, बहुत बड़ा काम मिल गया, इतना बड़ा काम, और वे एक तरफ वैराग्य था और दूसरी तरफ इतना बड़ा काम मिल गया, तो कैसे मैं करूंगा। लेकिन कैसे देखो बाबा ने करवाया, कैसे करवाया, कोई बाबा ने कोई उसके लिए मेहनत नहीं की, क्या करवाया, सबसे पहले साक्षात्कार करवाया, साक्षात्कारों से आकर्षित किया, सब कैसे आत्माएं भागी भागी आई, क्योंकि साक्षात्कार होते थे, पैसे पैसे साक्षात्कार, ऐसे वहां पर लोग कहते थे, अखबारों में आता था, ओ बंडली में पैसे पैसे साक्षात्कार, तो ये क्रांति फैल गई जिससे लोग आने लगे, और उसमें भी बहनों माताओं को ज्यादा हुआ, तो बहनें माताएं यहाँ नशे में चढ़ गई थी, फिर तो देखो हाँ सब कुछ बदल गया, फिर कैसे भट्ठी बनी, फिर कैसे सब अंदर ही अंदर उस भट्ठी में सब पकते गए, गलते गए, पकते गए, भी हम कहेंगे ना आप भट्ठी में आए हो पकने के लिए, तो जो चीज अगर भट्ठी में पड़ती है तो क्या होता है उस चीज का, वो बदल जाती है, परिवर्तन हो जाती है, उसी रूप में नहीं रहती है ना। आप काला काला कोयला डालो आग में तो वो धीरे 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 राख बन जाएगा, उसका रंग रूप सब बदल जाएगा। आप आलू बैंगन टमाटर डालो वो थोड़ा सख्त होता है, वो आग में डालो तो नरम होने लगेगा। आप कोई नरम चीज डालो मिट्टी की ईंट, वो भट्ठे में डालो तो वो एकदम मजबूत बन जाएगी। तो कोई चीज तो एकदम मुलायम बन जाएगी और कोई चीज एकदम घट्ट बन जाएगी। सोना डालो तो खाद निकल जाएगी, मानो आग में वो चीज पड़ी वो बदलती जाएगी। इसलिए बाबा इसको योग भट्ठी कहते हैं। यहाँ पर सुबह से लेकर रात्रि तक ऐसे भट्ठी में पकना है, बाहर का कुछ भी न लगे, पैक्ड ना भट्ठे में सब अंदर पैक्ड होता है, हवा भी नहीं लगनी चाहिए, हवा भी नहीं, बाकी तो बातें छोड़ो, हवा भी नहीं लगनी चाहिए। एसी में ऐसे ही करते ना, सब बंद करो भाई, खुला रखेंगे ठंडक कहाँ से आएगी। तो इसीलिए दुनिया की निगाहों से दूर 14 साल बाबा ने उनको भट्ठी में पकाया, और जब पक के निकले तो देखो एकदम बदल गए थे, क्या उनकी स्थिति थी। और जब 14 साल भट्ठी में रहे तो कैसे धीरे धीरे इनके अंदर वैराग आ गया, क्योंकि दुनिया में परिवर्तन आने लगा उन्हीं 14 सालों में। न्यूज तो बाबा सुनते थे ना, रेडियो तो था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उन्हीं 14 सालों में, तो भी भारत में कितनी रक्त की नदियां बही, ग्रह युद्ध हो गया, फिर प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई उस समय, मानो विनाश विनाश की बातें थी। तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये सब क्या, ये विनाश है? तो बाबा कहते थे नहीं, ये तो केवल ट्रेलर है, ट्रेलर होता है ना, तो ट्रेलर तो छोटा दिखाते हैं, बड़ा थोड़ी दिखाते हैं, पूरी फिल्म तो लंबी चौड़ी होती है, पर ट्रेलर कितना दिखाएंगे, थोड़ा सा उसमें से कुछ भी कुछ सार केवल, बच्चे ये तो ट्रेलर है। तो सचमुच अभी ट्रेलर ही इतना भयावह देखा, तो फिर जो असली होगा वो कैसा होगा। तो इसीलिए एकदम सब में वैराग आ गया, बच्चों ने भी बहुत साक्षात्कार किए, धर्मराजपुरी के भी साक्षात्कार किए, स्वर्ग के तो साक्षात्कार करते ही रहे, शहजादियाँ आती थी 8-8 दिन, शहजादी बहन के तन में होती थी तो वो कैसे चलती है, क्या खाती है, कैसे सोती है, बिल्कुल सब कुछ जैसे उनको पता चलता गया। धर्मराज की सजाएं क्या होती है वो भी अनुभव करते थे। फिर बाबा उनको कहते थे, जो तुमने देखा ना वो यहाँ पर वो ड्रामा करके दिखाओ। फिर वो ड्रामा करती थी, बहुत कुछ 14 सालों में किया। मनोहर दादी से हम पूछते थे, दादी 14 साल आपने क्या किया? आज 1 साल भी बहुत बड़ी बात होती, तो 14 साल तो क्या किया 14 साल? तो बड़ी प्यार से दादी मुझे कहती थी, अरे शीलू क्या बताऊं, ऐसे कहती थी, 14 साल तो लगे ही नहीं, हमको तो ऐसे ही लगा 14 दिन थे केवल। देखो, क्योंकि जो अच्छा होता है ना वो कितना भी समय लगेगा, अरे अभी अभी तो शुरू किया, अभी अभी तो हुआ। और जो दुख की सीन आती है वो भले छोटी होगी लेकिन बहुत लंबी लगती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो 14 सालों में बाबा ने सब कुछ अनुभव कराया। इसलिए जब पक के निकली भट्टी से तो एकदम बदली हुई, इतनी बदली हुई कि लौकिक संबंध क्या होता है वो ही पता नहीं। एक बार मनोहर दादी से किसने परिचय कराया, उनका कोई लौकिक आया था, दादी ये आपके फलाने की फलाने की फलाने, कहते मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, तुम्हारे मामा के भतीजे की फलाने, मतलब कुछ ना संबंध होते हैं ना, तो कितने दूर के भी रिश्ते हम बोल देते हैं, लेकिन दादी के हमको नहीं ये सब समझ में आता, क्योंकि लौकिकता तो भूल ही गई, लौकिकता क्या होती है वो तो एकदम भूल गई। लौकिक संबंध की जो एक बांस होते है ना वो थी नहीं, कितना अंतर पड़ गया। सबसे बड़ा अंतर तो बाबा और यशोदा में आया, कहां उसका पति और कहां उसको बाबा कहे, पिता कहे, और कहां वो पत्नी और कहां उसको बेटी कहे। मम्मा और मम्मा की माँ आई तो सब मम्मा कहने लगे, तो मम्मा की जो माँ थी वो भी मम्मा को मम्मा कहने लगी, तो माँ बेटी को मम्मा कहे और बेटी माँ कहे, मतलब बेटी कहे बेटी अपनी माँ को। तो देखो इतना अंतर पड़ गया। बाबा ने भी कैसे अपना मोह तोड़ा, बाबा की बहू में बाबा को बहुत मोह था, बहुत सुंदर थी ब्रिज इंदिरा दादी, बहुत बहुत सुंदर थी। हमारी वासंती बहन ने तो ब्रिज इंदिरा दादी की बहुत पालना ली है, नहीं है ना, सुनाती होंगी ना ब्रिज इंदिरा दादी की बातें इनको। बहू थी बाबा की लौकिक में और इतनी सुंदर थी, बाबा के लिए जैसे वो सेल्स वुमन थी। कैसे, तो बाबा बिजनेस में थे तो ज्वेलरी बनाते थे, हीरे जवाहरातों की ज्वेलरी, तो अपनी बहू को लेके जाते थे राजाओं महाराजाओं के पास, और वो ज्वेलरी पहन करके तो और सुंदर लगती थी, है ना, सोने के जेवर पहनो तो और सुंदर लगे, पहले ही सुंदर है। तो वो जो रानियों के पास तो बाबा तो नहीं जाएंगे, और वो बहू रानी वो पहन के आती थी, तो बहन जो रानियाँ थी वो बहू को बुलाती थी अपने महल में, अपनी वो शैया कक्ष में, तो वो कहती थी, अरे ये तो बहुत सुंदर है आपका हार, तो मुझे ऐसा ही हार चाहिए। तो राजा को कहती थी, मुझे ऐसा ही हार चाहिए। तो और बाबा भी बड़े चतुर, वो पहले से तैयार करके जाते थे दूसरा सैंपल लेके ही जाते थे, ताकि फटाफट उसी समय वो बिक जाए। तो बाबा की सेल्समैनशिप बाबा के हाथ में थी, इसीलिए अब हीरे जवाहरातों के जेवर कौन खरीदेगा, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी खरीदेगा, जो राजा महाराजा थे उन दिनों के वो लेते थे, या अंग्रेज खरीदते थे तो अंग्रेज लेते थे। तो महाराजाओं से उठना बैठना होता था, इतना नशा था। तो बाबा की बहू ब्रिज इंदिरा दादी में बहुत मोह था, तो बाबा ने कैसे युक्ति से वो मोह तोड़ा। बाबा तो सबको कहते थे तुम आत्मा हो आत्मा हो, लेकिन बाबा दीवारों पर लिखते थे, क्या ले उनकी बाबा की बहू का नाम ये राधिका था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। फिर युगल पत्नी, उनका बुद्धि योग टूटे तो यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, तो यशोदा भी पढ़े ना जो बोर्ड दीवार पर लिखा है, ताकि उनका भी मोह टूटे। तो ऐसे मोह टूटा और धक से सब कुछ देह के सब संबंधों को कैसे हटाया बुद्धि से। तो अभी बाबा कहते अभी अंतिम समय है, तो जो आद में हुआ वही अंत में होना है। तो ये भान लौकिकता का ये भी मिट जाए और केवल वो अलौकिकता का ही अनुभव हो, ये बहुत जरूरी है। पर वो उस पर इतनी मेहनत नहीं करते हैं कई। मैं तो कईयों को देखती हूँ क्लास में आएंगे ना, तो पहले अभी बहन वाइफ आएगी तो वो पहले देखेगी मेरा युगल आया या नहीं आया है। हाँ मेरा युगल आया, वैसे खड़ी होकर के देखती रही। और फिर वो भी कभी आएगा तो देखेगा मेरी युगल आई है कि हाँ। अब युगल क्योंकि वो तो दूसरे कमरे में होगी बहनों के साथ और वो भाइयों के साथ, मतलब इतना सबको तो एक कमरा तो नहीं दे सकते ऐसे, तो लेकिन वो उनको याद करेंगे। तो और यहाँ क्या बाबा कहते हैं, मधुवन में आते हो ना तो हरे का सूटकेस अलग ही है ना, कि युगल के साथ है आपके कपड़े, क्या है क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अपना हिसाब किताब, आपका अपना हिसाब किताब, आपको अपनी तरफ से रहना। तो क्या देहधारियों की बांस भी ना आए? तो इसीलिए इसके आधार से ही तो हम कर्मातीत बनेंगे ना। फिर कर्मातीत बन के संपन्न, संपूर्ण गुणों में संपन्न, पवित्रता में इतनी संपूर्णता, जो बाबा कहते हैं कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता न हो। स्वप्न मात्र भी क्या होता है? अपवित्रता न हो। और तब हम वापिस घर जाएंगे। पर घर जाने से पहले क्या बनना है? यात्रा है ना हमारी, संपन्न बने, संपूर्ण बने, फिर उसके बाद हमको फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता का भी तो अनुभव यही करेंगे ना, क्योंकि सूक्ष्म वतन है ही संगम युग पर। सारे कल्प में सूक्ष्म वतन का पाठ नहीं है। साक्षात्कार जो होते हैं भक्ति मार्ग में वो तो ड्रामा अनुसार होते हैं, पर संगम युग पर ही देवताएं और ब्राह्मण मिलते हैं आपस में। ब्रह्मा भोजन, देवताएं तरसते हैं खाने के लिए, ये संगम की ही यादगार है। सत्युग में तो देवताओं को पता ही नहीं होगा कि ब्राह्मणों का ब्रह्मा भोजन है। पता होगा क्या वहाँ उनको? क्या पता, चक्र का ही पता नहीं है। लेकिन ये संगम की बात है, जब ब्राह्मण फरिश्ते के रूप में, हाँ वो देवताएं भी फरिश्ते के रूप में मिलते ना। सत्युग में ऐसे देवताएं थोड़े होंगे, फरिश्ते के रूप में मिलते हैं। तो लाइट के आकार में मिलते हैं, लाइट के आकार में है, और होठों की भाषा है जिसको विस्परिंग कहते हैं, क्योंकि आवाज तो वहाँ है ही नहीं, कैच करना होता है। तो अगर बुद्धि बाबा कहते हैं शुद्ध है, साफ है, तो कैचिंग पावर, टचिंग पावर वो बहुत सुंदर आती है। इसीलिए संदेशियाँ भी अलग अलग ही होती है, उनके सबके जो संदेश भी अलग अलग ही होते हैं। भले दिखाई एक ही देगा समझो, परंतु वो बोलेंगे कुछ अलग अलग। क्यों? क्योंकि कैचिंग पावर, टचिंग पावर सबके अलग अलग है। तो ये सूक्ष्म वतन, फिर हम घर जाएंगे। और घर गए माना सब कुछ खत्म, देह के सब संबंध, सब बुद्धि, सब से बुद्धि खत्म, आत्मा मुक्त हो गई। आत्मा परम धाम जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाती है, फिर जीरो पर वापस। सारे चक्र का ज्ञान जो अभी है, इतना ज्ञान बाबा ने दिया, सब कुछ खत्म। केवल वो संस्कार आत्मा में होंगे, वो शुद्धि के संस्कार, वो भी बाबा कहते हैं या तो योग बल से शुद्ध बनो या तो सजा बल से बनो। तो जब बिल्कुल शुद्ध होकर के घर जाते हैं तब फिर नए सिर चक्र शुरू होता है, तो देवता बनते हैं। तो बताइए कितना इस यात्रा में कहाँ से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, शूद्रपन से शुरू किया, और धीरे 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 देवता बन गए। ऐसे ही बनना है ना। तो अभी हर एक अपने आप से पूछे मैं कहाँ तक पहुँचाऊँ, कहाँ तक पहुँचाऊँ। ब्राह्मण में भी फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि कई स्टेजेस है ना ब्राह्मणों की भी, कितनी परसेंटेज में हम हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं वो अपनी चेकिंग करो, जैसे ब्रह्मा बाबा चेकिंग करते थे। अब हम अपनी चेकिंग कौन कैसे करेंगे, हर वक्त हम अपनी चेकिंग हम कर सकते हैं, हर वक्त हर घड़ी। बाबा को सामने लाओ, ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ। इसीलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझे याद मत करो। हाँ ब्रह्मा, आपको याद नहीं करना है, मेरा फोटो भी नहीं रखो। लेकिन फिर क्यों रखते हैं ब्रह्मा बाबा का फोटो, ताकि उनको फॉलो कर सके। ओम शांति, ओम शांति।